ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बजाओ
बैठ के बजाओ, बैठ जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेमानंदे नंदगांव धाम की, ब्रजमंडल भूमि की, कृष्ण बलराम की ताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे श्याम। तो चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए तो काम्यवन में गए और काम्यवन के बाद में वो नंदगांव आए। ऐसे भक्ति रत्नाकर इस ग्रंथ में लिखा है, नरहरि सरकार चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है भक्ति रत्नाकर। उसमें आचार्य श्रीनिवास को जो ब्रज यात्रा दी गई थी उसका वर्णन आता है। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या क्या किया ब्रज में उसका वर्णन आता है। तो काम्यवन दर्शन करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु नंदगांव आए, उन्होंने पावन सरोवर में स्नान किया। पावन सरोवर में स्नान करते हुए ऐसे लिखा है कि उन्होंने 56 कुंड में स्नान किया, क्योंकि नंदगांव में 56 कुंड हैं। बहुत सारे कुंड अभी लुप्त हो चुके हैं, बहुत सारे कुंड का कुछ उद्धार भी हो रहा है और कुछ कुंड बुरी अवस्था में है, लेकिन 56 कुंड का शास्त्र में लिस्ट आता है। पावन सरोवर में स्नान करने के बाद सब कुंडों में स्नान करके चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों से पूछने लगे, ब्रजवासियों से, कि यहाँ कहीं एक बड़े बाबा और एक मैया और एक बालक की मूर्ति है क्या? सब लोगों को पूछने लगे। तो कुछ बुजुर्गों ने उनके बताया कि एक बड़ी गुफा है, उसके अंदर एक ऐसी मूर्ति विराजमान है। तो सब ब्रजवासियों की सहायता से वो उस गुफा में गए जो नंद पहाड़ के, मतलब नंदीश्वर पहाड़ के ऊपर थी। और अंदर जाकर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि पगड़ी फेटा पहने हुए नंद बाबा, उनके बाजू में यशोदा मैया और उनके बीच में कन्हैया जी खड़ी थी। तो उसने आंसू बहा बहा कर वहां पर उनसे वार्तालाप किया तो ब्रजवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या है, वो क्या यशोदा मैया से क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान को हाथ लगा लगा कर क्या बोल रहे हैं, नंद बाबा से क्या वार्तालाप हो रहा है, ऐसे वो आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे देखो देखो कितना प्रेम है उनके बातों में, देखो कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं कन्हैया जी को छू छू कर। तो बाकी लोगों ने कहा कि हाँ ये स्वयं कृष्ण ही होंगे, इतना प्रेम यशोदा मैया के प्रति कृष्ण के अलावा किसी को नहीं हो सकता है, तो ये कृष्ण ही है, पुनः अवतार लेकर कलयुग में आए हैं। सब लोगों ने जल्लोष की आंखों में आंसू बहाकर उन्होंने जय जयकार किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि यही वो नंद महाराज और कृष्ण भगवान की मूर्ति है और फिर उनको स्थापित करने को उन्होंने योजना बनाई। तो ये जो आप आज के विग्रह हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको स्पर्श करके उनसे वार्तालाप किए मूर्ति है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत नंदगांव में कीर्तन किया, नंद भवन के ऊपर जाकर भी कीर्तन किया, जहाँ पर हम लोग ने कीर्तन किया वहाँ पर भी बैठ के कीर्तन किया, फिर आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु उससे आगे चले गए। तो ये जगह जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि नंद बाबा और यशोदा मैया सब गोपियाँ जो सखियाँ छोटी सी हैं, सब लोग जब कृष्ण भगवान को विदा करते हैं गौचारण के लिए तो बड़ी व्याकुल हो जाती है, श्रृंगार करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन बड़ी व्याकुल हो जाती है। और फिर उसके बाद में जो उनके लिए युगा इतम निमेशण, एक एक क्षण जो है वो युग के समान हो जाता है। वो ऐसे बताया गया कि यशोदा मैया और सब गोपियाँ बार बार खिड़की के पास आके देखती है सूरज कितना ऊपर है, क्योंकि जब सूरज ढलेगा तो आएगा ना वापस, तो दिन में कई बार कहीं सूरज ढल तो नहीं गया, कहीं कन्हैया आ तो नहीं रहे हैं, ऐसे करके बार बार खिड़की की ओर जाते हैं। और जब वास्तव में जब सूरज ढलने लगता है तो इनकी आतुरता बहुत बढ़ जाती है, अरे अभी आएंगे अभी आएंगे, बहुत दूर से देखते हैं कहीं नजर नहीं आ रहे, फिर वापस खिड़की में वापस बाहर वापस खिड़की में वापस बाहर। फिर एक बार जब सूरज काफी नीचे आ जाता है तो खिड़की में बैठ जाते हैं और दूर देखते हैं नजर नहीं आ रहा, ओ धीरे 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 धूल नजर आ रही है, आकाश में उड़ रही है गो धूली गो रज, इसका आकाश में ऐसे प्रवाह हो रहा है, समझ रहे हैं अभी आ रहे हैं अभी आएंगे आएंगे। कुछ देर बाद में कुछ आवाजें भी आने लगती हैं, बसरी बज रही है कोई बिगुल बज रहा है कोई शोर मच रहा है, बाल बाल हंसी मजाक कर रहे हैं, तो फिर ये वहां पर उनको बैठना मुमकिन नहीं है, पहाड़ पर बैठना नंद भवन में नॉट पॉसिबल, नंद बाबा और यशोदा मैया जो है नीचे उतर के आते, ये उनकी आतुरता का प्रमाण है। हो सकता है कि वो वहीं बैठेंगे तो कृष्ण भगवान अपने आराम से गाते गीत गाते हुए आनंद लेते हुए ऊपर तक पहुंच जाएंगे ना, थोड़ी तो वहां नीचे रहेंगे, लेकिन इनको जब कृष्ण भगवान का दर्शन दूर से हो रहा है धूल के रूप में पहले मालूम पड़ रहा है कि ये भी कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तो इनकी जो आतुरता है वो वहां पर उनको नियंत्रण नहीं कर सकते उसके ऊपर, और फिर नीचे आ जाते हैं भाग भाग के यहाँ पे आके बैठ जाते। और आते ही आपको पता है ना वो सीन जो है ना, एक अपने मुरलीधर नाम के एक आर्टिस्ट थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया, बहुत सुंदर, वो भी कृष्णचंद्र प्रभु के घर पे वो ओरिजिनल पेंटिंग लगाया गया है, बहुत सुंदर, हरे रंग का अंगरखा पहनकर नंद बाबा और यशोदा मैया जो है वो कृष्ण भगवान को ऐसे बुला रहे हैं और कृष्ण भगवान ऐसे भाग के ऐसे आ रहे हैं और सखियाँ आतुर होकर देख रही हैं, किसके हाथ में लैंप है किसके हाथ में भोग है किसके हाथ में पेड़ा है संदेश है, ऐसे खड़े हैं और बड़े आतुरता से ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं, जैसे कि मानव नेत्रों से कृष्ण भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पी रहे हैं दर्शन को, पान कर रहे हैं उसका। फिर आगे जोर से वो बाबा के गले मिल जाते हैं कृष्ण भगवान दोनों तरफ से, और फिर बाबा उनको लेके वहीं बैठ जाते हैं, वहीं उनके मुंह में संदेश और मिठाइयाँ लड्डू खिला देते हैं, इतना प्रेम है नंद बाबा और यशोदा का। हाँ, फिर कभी मैया की गोद में कोई बाबा की गोद में कोई मैया की गोद में, आपने देखा वो फोटो तुम ध्यान से देखेंगे ना, दोनों के हाथ में बांसुरी है और एक हाथ ऐसे बलराम जी का एक हाथ ऐसे कृष्ण का और दोनों हाथ ऐसे पकड़े हुए नंद बाबा, मतलब हर तरफ से हाथ पैर सब ऐसे एकदम, एक पैर कृष्ण भगवान का ऐसा एक नंद बलराम जी का ऐसा, दोनों ऐसे मतलब जैसे कि आलिंगन दे रहे हैं सबको, तीनों एक दूसरे को आलिंगन दे रहे हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं। तो ये यहाँ का भाव है, कृष्ण भगवान के लिए हमको कैसे आतुर होना चाहिए, कैसे व्याकुल होना चाहिए, जो कृष्ण भगवान के बारे में सोचता है वही उसके लिए व्याकुल हो सकता है, किसी ने अभी अभी प्रवचन में प्रश्न पूछा था कि कैसे हम कृष्ण के लिए विरह का अनुभव कर सकते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रवचनकार ने कि पहले उनको याद करने को सीखना चाहिए तो भी उनका विरह उत्पन्न होगा ना। जब उनको याद ही नहीं कर रहे हैं, खाली इंद्रिय भोग के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे विरह उत्पन्न होगा उनके बारे में। जब शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, जब उनके बिना हमको दुनिया का जल, खाना पीना, रहना, वस्त्र कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं, केवल वही वो एक रहेंगे, उनके ऊपर ही हमारा थोड़ा ध्यान रहेगा, उनकी स्मृति में, उनकी लीला में, उनकी सेवा में मग्न रहेंगे, हमारी इंद्रियां उनकी सेवा करके गुरु जी के आश्रय में शुद्ध हो जाएंगी पूरी तरह से, तो उनका जो है वो पांचवा स्तर का स्मरण कहा गया है, अनुस्मृति, उसके बाद में समाधि। रूप गोस्वामी जो है उपदेशामृत में समझाते हैं, प्रभुपद तात्पर्य में विस्तार में लिखते हैं कि स्मरण पांच स्तर का होता है, चौथा स्तर जो है वो अनुस्मृति है और पांचवा स्तर जो है समाधि है, उसका इंटेंस अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस, तीव्र एकदम उत्कट तीव्र स्मृति जिसमें कोई बाधा नहीं, बीच में अबाधित है बीच में, और उसमें वो जीव जो है वो बना रहता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ घंटों के लिए ऐसे रहता है, चार घंटे में समाधि में रहेगा, ऐसा नहीं। यशोदा मैया नंद बाबा की स्थिति जो है वो 24 आवर्स 12 मंथ्स और फुल लाइफ, पूरा जीवन भर उनकी अवस्था ऐसी समाधि की अवस्था है। समाधि का मतलब ये नहीं कि हम जंगल में गुफा में चले जाएं और आँख बंद करके बैठ जाएं और कुछ नहीं करें और बोले बाबा समाधि में, ऐसा नहीं होता है। समाधि जो है वो निरंतर उत्कट स्मृति के अंदर भगवान की सेवा में सारे इंद्रियों को लगाए रखना, बनाए रखना और प्रेम में संपृक्त, यानी कि सैचुरेटेड हो जाना, उसको समाधि अवस्था कहते हैं। और यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल, ये सब चिरंतन समाधि अवस्था में रहते हैं, ये सही समाधि है, हाँ, ये मृत्यु वाली समाधि नहीं, ये सही समाधि है जो हर गौड़ीय वैष्णव, हर भगवान का जो भक्त है, जो अपने आप को भक्त समझने का प्रयास करता है, भक्त बनने का प्रयास करता है, उनके लिए ये समाधि अंतिम लक्ष्य है। चाहे हम रसोई बना रहे हैं तो यशोदा मैया जो दूध गर्म कर रही है, या दही मक्खन बना रही है, मंथन कर रही है, या संदेश बना रही है, या उनको नहला रही है प्रत्यक्ष, या वो ना होते हुए मक्खन बनाया जा रहा है, ये सभी प्रकार का जो कार्य है केवल उनके लिए, उनकी स्मृति में, उनके प्रेम में पूरी तरह वश रहकर बनाया हुआ कार्य है। वो जो कल किया हुआ है वो आज गीत बनाकर उसको गा रहे हैं, और गीत गाते गाते कल की लीला का आज की सेवा हो रही है, चाहे उनको वो अपने गोद से अलग भी कर रहे हैं, कभी कभी करना पड़ता है ना, क्योंकि वो जो 100 पद्मगंधा गायें जो हैं, उसके बारे में बताना रहेगा मेरा आपका, उनका दूध उबल रहा है और वो उबल के नीचे गिर रहा है, तो इसलिए अपने स्तन से बालक को अलग करके मैया अंदर भाग रही है, लग रहा है अरे ये कैसा प्रेम है, जो स्तनपान करके आनंद ले रहा है उसको निकाल के वो रसोई में भाग रही है, तो भगवान भी नाराज हो रहे हैं। तो यशोदा मैया का जो भाव है वो भगवान की सेवा के लिए है, क्योंकि वो 100 जो गायें हैं वो कैसे बनाई गई है, वो बहुत बड़ा टेक्निक है उसका, बहुत लंबा चौड़ा तरीका है, जो खास प्रकार का सुगंधित जो घास है जिसको कमल का, कमल की खुशबू आती है उससे, कमल का सुगंध रहता है उस घास को, वो घास कुछ गिने चुने भूरे रंग के, ऐसे वही बहुत अच्छे अच्छे गाय होती है जिनका कलर के ऊपर वो तय करते हैं कौन से बेस्ट गाय है, ऐसे 100 गाय यशोदा मैया तैयार करती है, उनको परवरिश करती है, उनकी जो विशेष रूप के गाय घास खिलाती हैं, उसका दूध जो होता है उसको भी कमल की खुशबू आती है, उसका जो मक्खन निकलता है और उसको तीव्रता से कमल की खुशबू आती है, और वो कमल, वो जो मक्खन है वो उनको खिलाती है वो, और कुछ दूध को निकालती है और गर्म करके उससे संदेश, मिठाई, बर्फी बन जाती है, तो सब भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसे ही यहाँ की जो भावना है ये हमको स्वीकार करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये आतुरता जो है, प्रभुपाद जी कहते थे कि ईगरनेस इज द प्राइस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आतुर होना, आतुर होने के बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हमको शादी करनी है तो हमको उसके लिए आतुर होना पड़ेगा, फिर हम लोग लड़की देखेंगे, फिर वाग निश्चय होगा, फिर शादी होगी, फिर हम लोग उसकी कितनी योजना करते हैं, कितना बॉम्बे में और भारत में खर्च होता है उसके लिए, हाँ, आतुर होना जरूरी है हृदय से किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए, प्रेमिका की प्राप्ति के लिए, प्रेमक प्रियकर के प्राप्ति के लिए, जब तक हृदय आतुर नहीं होता है तो कोई चीज प्राप्त नहीं होती। हमको यहाँ पर आतुर होना सीखना है कि दुनिया की जो आतुरता है माया की, उसको छोड़कर हमको भगवान के लिए आतुर होना सीखना है। अभी नहीं है, हम आतुर नहीं है भगवान के लिए, अभी हम इंद्रिय भोग के लिए आतुर हैं, धन को बढ़ाने के लिए आतुर हैं या प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, यश को बढ़ाने के लिए हम लोग आतुर हैं, लेकिन यहाँ की आतुरता जो है वो धन निरपेक्ष, पद निरपेक्ष, हाँ इंद्रिय भोग निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं है उनको, केवल भगवान के आनंद। और यहाँ का जो आतुरता है वो एक विशेष आतुरता है कि अगर खुद को कष्ट भी हो जाए तो भी वो आतुरता बनाए रखने के लिए कार्यरत रहते हैं हमेशा, उनकी आतुरता में खंड नहीं आता। कोई कष्ट होगा, कोई बीच में भगवान चले गए, निकल गए यहाँ से, मथुरा चले गए, वहां से द्वारका चले गए, तो कहा भगवान है ही नहीं तो सेवा कैसी होती, नहीं, दिन रात उनके विचार में मग्न है, दिन रात उनके आने का स्वागत की तैयारी हो रही है, आज आएंगे, कल आएंगे, उन्होंने कहा था परसों आएंगे, दो दिन के बाद आएंगे, उन्होंने कहा था, इसको वादा किया था, उसको वादा किया था, वहां कहा था। तो 100 साल तक, 10 साल का संघ, ऐसा कहते हैं कि 1 decade ऑफ एसोसिएशन एंड 1 century ऑफ सेपरेशन, 10 साल के लिए मिलन भगवान के साथ और 100 साल के लिए विरह, फिर भी वो तैयार है, फिर भी कोई उनके आतुरता में, उनके तत्परता में, उनकी रोज की तैयारी में, उनकी स्मृति में कोई बाधा नहीं है, कोई डाइल्यूशन नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कुछ नहीं। उल्टा जैसे वो विरह में गए उससे उनकी आतुरता उत्कंठा जो है बढ़ती गई, भले उन्होंने कभी कभी उस प्रसंग में भगवान को बुरे अपशब्द भी उच्चारण किए, लेकिन फिर भी वो जो है रूप गोस्वामी समझाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि वो अपशब्द भी जो है वो प्रेम का उत्कट प्रकटीकरण है। उनका बेहोश होना, उनका होंठ दबाना, उनका सांस फूलना, पसीना आना, अपशब्द उच्चारण करना, पागलों की तरह वार्ता करना, ये सब जो है लक्षण अष्टविकार के बीच में आते हैं और ये सब रोज के समय के, रोज के अनुसार यहाँ पर हुआ करता था। तो ये जो भूमि है, ये गोसाई जी हमको बताते हैं कि यहाँ पर 2 प्रसंग जो है वो बहुत हृदय प्रसंग है, एक अक्रूर गमन और एक उद्धव का यहाँ की भेंट जो है। नंदबाबू के लोग जो है रोते हैं, आज भी जब लीला होती है तो गोसाई बताते हैं कि 8-8 घंटे का नाटक होता है, रात भर चलता है वो, एक प्रसंग पर उद्धव जी का नंदगांव में आना, इसमें 8 घंटे की नाटिका होती है। अभी होती है गोसाई जी? अभी भी होती है। और बालक समय से ही गोसाई जी चाया करते थे उधर गोपाल जी मंदिर में, यहाँ नंदगांव में। तो ये उद्धव जी का प्रसंग जो है, अभी हम जाएंगे वहां पर। अक्रूर जी का थोड़ा प्रसंग बताते हैं आपको। आप जानते हैं कि बहुत राक्षसों का वध करने के पश्चात कंस ने बहुत धूर्त विचार किया कि अभी हम उनको यहाँ ले आएंगे, क्योंकि वहां पर वो वश में नहीं हो रहे हैं, सब राक्षस मर रहे हैं, अभी उनको धनुर्धर के बहाने यहाँ बुलाएंगे और बड़े बड़े जो योद्धा हैं, जो कुश्तीगीर हैं, उनको सब लगा देंगे उनके ऊपर, हाथी से लेकर सब लोगों को, और कहीं ना कहीं तो उनका मृत्यु हो जाएगा, बालक है छोटे से, क्या है। लेकिन इतना धूर्त सोचते हैं वो कि उनके काका जो हैं तो उनके भक्त हैं, जानते हैं वो, हम लोग बुलाने जाएंगे तो नहीं आएंगे, मैया पापा भेजेंगे नहीं उनको। तो उनके सेनापति थे अक्रूर जी, उनको ही भेजने का प्रबंध करते हैं ताकि वो काका जब बुलाने आ रहे हैं तो कैसे ना कहेंगे। और आप सोचेंगे अरे काका भी कैसे क्रूर थे, भक्त कहते हैं अपने आप को और वो उनको मारने के लिए लेके जाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं, वो जानते हैं। और उनकी भावना क्या, अरे कंस की सेवा में हूँ तो अभी इतना भाग्य मेरा उदय हो रहा है, मुझे अभी कृष्ण भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो उनका भी स्मरण जो है वो बहुत उल्लेखनीय है भागवत में, उनका स्मरण जो है जैसे वहां से निकले यहां तक आने तक उनका मनन जो, चिंतन जो है, उसका वर्णन भागवत में आता है। इतना सुंदर मनन किया उन्होंने, वो मग्न होकर पूरे सब कुछ अपने अस्तित्व को भूल कर वो चले वहां से, एक ही ध्यान करके दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, फिर क्या कहूंगा, क्या कहेंगे। और यहां पहुंचते हैं और फिर जब निकलने का समय होता है, हमारे एक ब्रिजभूषण गोस्वामी थे जिनको बिरजी बाबा कहते थे, बड़े अच्छे ब्रिजवासी थे वो, जहां हम गए थे ना अभी रास बिहारी के दर्शन करने के लिए, जो कृष्ण भगवान की राधा रानी की मूर्ति थी वो उनका घर है, वहां पर वो रहते थे, अभी वो नहीं रहे। भक्ति विधान हॉस्पिटल में भी आए थे, कई बार उनका इलाज किया गया, हमारे गुरुजी के बहुत बहुत ज्यादा परम मित्र थे वो, और हमको हमेशा बाजरे की रोटी गरम गरम और मक्खन डालकर खिलाते थे। एक एक रोटी आती थी, हम लोग 8-8 टुकड़े करके खाते थे, दूसरी आती थी 8-8 टुकड़े करके खाते थे, बड़े प्रेम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ठंड के मौसम में बाजरे का रोटी यहाँ का डेलिकेसी है, बहुत स्पेशल है वो, बहुत बड़े प्रेम से खिलाते थे। अभी उनके पुत्र हैं घनश्याम जी, वो भी ऐसे ही प्रेम करते हैं। तो वो हमेशा हमको जब बंबई में आए थे तो वो ये कथा बताते थे, और वो कथा कितनी बार बताई उनको मुझे याद नहीं है, कई बार हर रोज बताते थे कि कैसे अक्रूर जी आए और जब अक्रूर जी यहाँ पे उनको ले गए और फिर बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है वो भागवत में कि कैसे उन्होंने गोपियों ने विरह किया। यहाँ पर एक गांव है पास में, उसका नाम है ब्रजवारी, संस्कृत नाम है ब्रजवारी। हाँ, तो जब अक्रूर जी नाम बुझा में समझा बुझा के जब ही कृष्ण बलराम को लेकर चले यहाँ से कि मैं खुद जाऊँगा, मैं उनको ले आऊँगा वगैरह धनुष यज्ञ देखने के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल से राजी हो गए। पहले ना ही कह रहे थे, फिर राजी हो गए, फिर गोपियाँ तो राजी नहीं थी बिल्कुल, तो गोपियाँ लेट गई, सब उनके रास्ते पर लेट गई, बोले हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से, अब जाना है हमारे ऊपर से रथ ले जाना, हमारी शव के ऊपर जाना फिर आप जा सकते। तो कृष्ण भगवान कहते ऐसे कोई प्रेम होता है क्या? मैंने आपको समझा रहा हूँ मैं कि आऊँगा मैं, हाँ इतना आप व्याकुल क्यों हो रही हैं? मेरी बात पे विश्वास करो कि मैं आऊँगा। उसमें रहस्य की बात ये थी कि 10 साल संग देने के पश्चात वो संग वाले प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। अभी भगवान को उनको अगली कदम में, अगली कक्षा में भेजना था। जो विरह वाला जो प्रेम होता है वो उसके ऊपर का होता है, तो अगली कक्षा में उनको भेजना था, इसलिए भगवान ने यहाँ से जाने का प्रबंध किया। लोग कहते हैं भगवान कितने क्रूर हैं, इतनी गोपियाँ प्रेम करती थी फिर भी वो कितने क्रूर हैं, उनको कितना उन्होंने मनाया फिर भी गए और बोले 2 दिन में आऊँगा। 2 दिन में तो आए नहीं, 2 महीने भी नहीं आए, 2 साल में भी नहीं आए, 100 साल तक उनको तड़पाया, कैसे भगवान है क्या? और गोपियाँ भी ऐसे कहती थी ऐसे इनको प्रेम नहीं करना चाहिए, इन पर दिल लगाना नहीं चाहिए, एक दिल बार लगा दिया तो बाद में जिंदगी भर रोना है, या आप भी मत लगाओ, ऐसे वो कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, गोपियों को उन्होंने उत्कट भाव स्वरूप का संग दिया हृदय के अंदर, जो व्यक्तिगत संग से भी कई हजारों करोड़ों गुना अनंत गुना जो था उत्कट था, और गोपियों ने विरह में उनका अति उत्कट संग किया और अति उच्च आनंद का अनुभव किया, जो आंखों से आंसू बह रहे दुखे लेकिन हृदय में वो दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो जब यहां से निकले तो गोपियों ने पहले रोक दिया उनको, तो बहुत बार मनाया फिर उनको, फिर वो चलो चलेंगे तो भगवान ने बहुत जोर से रथ भगाया तो ये उनके पीछे हवा की तरह भागने लगे। तो भगवान बोले अरे इतना वेग से भाग रहे हैं, रथ किसी अधिक वेग से भाग रहे हैं, हवा की गति से भाग रहे हैं। तो भगवान ने वज्राघात किया आकाश से, जो होता गए हम समझ सकते हैं बॉम्ब ब्लास्ट की तरह के होता है, बहुत जोरदार वज्राघात हो गया भूमि पर। तो उसके ध्वनि से और उसके आघात से सब गोपियां बेहोश हो गई, उन पर वज्राघात नहीं हुआ, उस भूमि पर हुआ, सभी गोपियां एकदम बेहोश हो गई। और जैसे ही बेहोश हो गई ये तुरंत रथ लेके भाग गए। वो गांव ब्रजवारी यहां से खैरा के रास्ते पर आता है, ब्रजवारी बहुत सुंदर गांव है, बहुत सुंदर वन है, और वहां से आगे भागते भागते रथ जो है वो गया और गोवर्धन के रास्ते पर एक गांव है उसका नाम है सी पल्सो, तो वहां तक पहुंच गए। तो ये होश में आ गए, अरे होश में आ गए तो कहा कृष्ण है, कहा बलराम है, कहा अक्रूर जी, कहा रथ कहा है, कुछ नहीं है सब गले। तो ऐसे गति से भाग निकले, आप सोच सकते हैं भगवान इतनी गति से जा रहे हैं रथ में से, और ये कुछ देर बाद जग कर भाग रहे हैं फिर भी उनको सी पल्सो में पकड़ लेते हैं गोपियां, बोले क्यों गए आप, क्यों जा रहे हैं? तो फिर उनको समझाते हैं, वहां वादा करते कि हम परसों आएंगे, इसलिए हाँ शीघ्र परसों आगमस्यामी, हाँ शीघ्र मतलब सी और पल्सो यानी परसों, तो नाम पड़ गया सी पल्सो, शीघ्र परसों, हाँ परसों आओगे। तो ऐसा वहां की लीला है सी पल्सो की, फिर वहां से वो चले गए और गोपियों ने यहाँ पे विलाप किया है। फिर वहां गए हैं, बहुत लंबी कथा है, कोयला पीठ को मारा है, चाणूर मुष्टि कोई मुष्टि युद्ध हुआ है उनको मारा है, फिर कंस को घसीट कर उनको मार दिया है, ये सब होने के पश्चात में कंस के 8 भाइयों को भी मार दिया है भगवान कृष्ण बलराम ने, तो सब राक्षसों का वध भी किया है। सब शांत होने के पश्चात वसुदेव देवको को मिले वो, और उन्होंने प्रणाम किया और किया, मैया आपकी मैंने तो सेवा ही कुछ की नहीं है, आप मैं अभी जो कहूंगा आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, आपके आज्ञा में रहूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। और ये कथा कहते हुए वो बिरजू बाबा बहुत फूट फूट कर रोते थे, समझ में जा रहा था क्यों रो रहे हैं, उसी प्रसंग पे आ गए फिर फूट फूट कर रोते थे। तो मैंने हमारे गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी वो बिरजू बाबा जो है वो हमेशा कथा बताते हैं और इसी पॉइंट पर रोते हैं, तो उन्हें बताया रहस्य की बात यह है कि सारे नंदगांव वासियों के लिए सबसे बड़ा दुखद प्रसंग था वो, उसमें जैसे ही वसुदेव देवकी माता ने उनको बताया कि अभी आपको यहाँ रहकर गुरुकुल जाना है, आप पर हम पर संस्कार करने हैं ना, यज्ञोपवीत होना है, गुरुकुल जाना है, सांदीपनि मुनि के आश्रम जाना है, फिर विद्या प्राप्त करनी है, जो हमारा कर्तव्य हमने किया नहीं कर नहीं सके तो हमको भी करना है, तो ठाकुर जी ने तुरंत हाँ कह दिया उनको। हाँ कहना मतलब क्या, परमानेंट नहीं आना नंदगांव में, ये यहाँ पर तय हो गया ना वो, तो वो बात जो थी वो जिस समय वो तय किया गया कि वो लौट के वापस नहीं आएंगे, ये एक बड़े वज्राघात के समान था ब्रजवासियों के। नंद बाबा सुन रहे थे, सब ग्वाल बाल भी देख रहे थे, नंद बाबा गए थे ना उधर, नंद बाबा गए थे, सह न सके उस बात को, एकदम बेहोश से हो गए वो, सब ग्वाल बाल निश्चेष्ट से हो गए। बहुत देर बाद होश संभाला, तब तो निर्णय हो चुका था, सबसे दुखद प्रसंग था वो, लेकिन लौटना भी था उनको वापस। तो वो इतने दुखी नंद महाराज थे, इतने दुखी थे कि वो कुछ समय के बाद में आगे उनकी गति नहीं बढ़ रही थी, मतलब वो नंदगांव की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे थे वो। तो वो एक गांव में रुक गए वो, बीच में वो गांव गोवर्धन चौराहे पे आता है, उसके आगे आता है वो राल के आगे आता है, उसका नाम है गौरव, गांव का नाम ही गौरव है। अभी क्या नाम है उसका, कुछ अलग नाम है उसका, लेकिन मूल नाम गौरव है। गौरव नाम इसलिए रखा गया कि वहां पर नंद बाबा का एक राजा के रूप में सभी गांव वालों ने स्वागत किया, बहुत गौरव किया उनका। लेकिन नंद महाराज उसमें इतने दुखी थे, इतने दुखी थे कि किसी गौरव को सुनने के मूड में नहीं थे, वो व्याकुल थे, वो तो अपने मन की तैयारी कर रहे थे कि जाना कैसे घर पे, यशोदा जी को मुंह कैसे दिखाना है, क्या बताएंगे उनको, क्या स्पष्टीकरण देंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे उनको। फिर भी बहुत सत्कार व्यवहार किया। हाँ, गौरव नाम है गांव का, गोराई, गोराई ऐसा नाम है कुछ, गोराई, अभी गोराई बोलते हैं लेकिन गांव गौरव है उसका। फिर वहां से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से भारी भारी पांव से एक एक कदम कदम करके नंदगांव तक पहुंचते हैं, उनको हिम्मत नहीं हो रही है अंदर आने की। मैया बोल रही, अरे आ गए आप, अरे कन्वा बुला के लिए मैं संदेश बनाया, ये बनाया वो बनाया, कहाँ पर है वो, उनको लगा नीचे खेलते होंगे, बहुत दिन के बाद आए तो अपने ग्वाल वालों को सखा में आनंद लेते होंगे और फिर थोड़ी देर में आएंगे। तो व्याकुल हो गया, आगे भाई भाग रही है, यहाँ वहां दिख रही है, बार बार पूछ रही है कहाँ है वो, अच्छा नीचे खेलते होंगे, अच्छा अच्छा आते होंगे, उनको बुला लो, मैं बहुत व्याकुल हो रही है, उनको बुला लो। ये शांत बैठे, क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे कुछ भी नहीं बोल पा रहे। बहुत देर बाद मैया बोलते जा रही है, बोलते जा रही है, बोलते जा रही है, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। फिर उनको कहता है कुछ, वो कह रहे हैं कि नहीं आए वो, तो जोर से हंस पड़ी, अरे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में आप, हाँ उनको ले आए और आप मुझे कह रहे नहीं आ रहे, मजाक करने का सोच रहा है, मैं तो व्याकुल हो रही है, आप मजाक कर रहे हो। तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे, आंसू बह रहे हैं, वो देख रहे, अरे आप रो रहे हो, क्या हुआ, नहीं आए वो, नहीं नहीं आप झूठ कह रहे हो, नहीं आप कह दो कि झूठ कह रहे हो, नहीं 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 मैं सच कह रहा हूँ, और जोर से रोने लगे। तो फिर उनका जो प्रेम आतुरता थी वो उसका रूपांतर जो है वो क्रोध में हो गया। ये भी रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ऐसा क्रोध जो आता है प्रेम में वो वात्सल्य का प्रेम का लक्षण है वो। तो बड़ा भूला कहने लगी, कैसे आपको छोड़ के आए, कैसे आपको मन हुआ आने का, कैसे आप हो, कैसे निष्ठुर हो, हाँ ऐसे भी कोई प्रेम करता है, ऐसा भी कोई पिता होता है, आपने साथ मिले गए थे और बिना छोड़ के कैसे आप आ पाए, कैसे आपके कदम आगे बढ़े वहां को उनको छोड़कर आने में। शांत रह के सुन रहे, फिर वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे, इनका क्रोध बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ते 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 बात कहां तक पहुंची, वो कह रहे आप तो निष्ठुर हो, आपको तो बालक के प्रति प्रेम ही नहीं है। हाँ, अरे एक तो पिताजी थे दशरथ बाबा, वो सच्चे पिताजी थे, देखो बालक उनका जब वन में गया, प्राण छोड़ दिए उन्होंने, मर गए वो। फिर उन्हें आगे जाकर बात कही, आप क्यों नहीं मरे, आप जीवित कैसे रहे, आप अभी तक जीवित कैसे हैं, वहीं पे प्राण क्यों नहीं त्याग दिए, देखो दशरथ बाबा ने उनकी विरह में प्राण त्याग दिया वहां पर। फिर भी सुन रहे हैं, फिर भी सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे तो वो भी गुस्सा कर सकते थे, अपना तो क्या कहते हैं उसको, स्पष्टीकरण दे सकते थे कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, मैं तो असहाय था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैया के सामने देवकी मैया के सामने कुछ बोल नहीं पाया, मैं तो बिल्कुल देखता रहा और मुझे असहाय होकर आना पड़ा, मेरी अवस्था कितनी खराब थी, वो जस्टिफाई कर सकते थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। सुनते जा रहे और वो बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, कितना आघात हुआ होगा उनके मन पर कि आपको कन्हैया के प्रति प्रेम नहीं है, आप वहां पर प्राण क्यों नहीं त्याग दिए, क्यों जीवित लौट के आए। फिर मैया ऐसे बोल बोलकर जो है बेहोश होकर गिर गई, उसको रह नहीं हुआ, उनका जो भावना थी, सब सखियां आई उनको पानी वानी छिड़क के उनको होश में लाया गया, गोद में रखा उनको गोपियों ने। वो फिर चले क्यों नहीं लाया आपने? तो जब वो थोड़े शांत हो गई तो नंद महाराज बोलने लगे, ध्यान से सुनिए आप क्या बोल रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेम जो होता है भगवान के प्रति, उसमें कष्ट भी आते हैं, संकट भी आते हैं, यातना भी होती है, हैरेसमेंट भी होता है, टॉर्चर भी होता है, आतंक भी होता है, फिर भक्त जो है वो भगवान का चरण कमल छोड़ता नहीं, उनकी सेवा को भी छोड़ता नहीं। तो जब यशोदा क्रोध सर के बेहोश होकर होश भी फिर आई, फिर एकदम घायल जैसे होकर, कमजोर होकर, एकदम असहाय जैसे होता है ना, वो बेहोश आदमी कैसे होता है, एकदम दुर्बल हो जाता है, वैसी अवस्था में वो जैसे सखियों के गोद में पड़ी हुई है, तो नंद बाबा बोलना आरंभ करते हैं। तो कहते हैं ऐसी है यशोदा कि मुझे भी मर जाना लग रहा था, कि मैं भी मर जाऊं, क्या अभी जीवन में अर्थ है? अगर कन्हैया गोकुल में नहीं है, नंदगांव में नहीं है, तो हमारा जीवन का अर्थ क्या? हम जी किसके रहे हैं? क्यों हमारा अस्तित्व का अर्थ क्या है? Why should we survive? ऐसा मुझे भी लगा उस समय, और मैं भी प्राण छोड़ने का विचार ही कर रहा था। लेकिन जब वो लौट के आया मैया और बाबा से बात करके कि मैं आऊंगा लौट के, मैं ये मैया को मेरा कर्तव्य करके फिर लौट के आऊंगा, तब मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी कि भाई आएंगे, तब मुझे फिर चला थोड़ी सी हिम्मत हुई चलने की, तो वहां से मेरे कदम ही नहीं उठ रहे थे। तो यशोदा मरना मेरे लिए बड़ा आसान था, दुख में विरह में प्राण त्यागना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन मुझे जीना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो लौटकर अपना कर्तव्य निभाकर माता पिता के प्रति जब लौटकर जैसे वादा किया, मुझे विश्वास है जब उसने कहा है कि मैं आऊंगा, जब कभी लौट के आएगा और अगर यहां देखेगा कि बाबा भी गुजर चुके हैं और मैया भी गुजर चुकी है, तो उस पर क्या बीतेगी? वो कैसे उसको झेल पाएगा कि मैं क्या सोचकर आया था कि मैं लौट कर आकर नंद बाबा और यशोदा का दर्शन करूंगा, उनके हाथ का नया नया ताजा मक्खन खाऊंगा, गोद में जाऊंगा और माता मुझे चुम्मा करेंगी, गोद में लेंगी, दुलारेंगी, प्रेम से अपने हाथ से बनाया हुआ रोटी मक्खन खिलाएगी। ये सोच के जब वो वहां से आएगा और खबर मिलेगी कि मैया भी नहीं रहे और बाबा भी नहीं रहे, तो उस पर क्या बीतेगी? उसके आने के लिए और उसके आने के बाद उसको आनंद देने के लिए हमें जीना होगा यशोदा, हमें जीना होगा, मरकर काम नहीं चलेगा, आपको भी जीना होगा और मुझे भी जीना होगा। उसके बाद 100 साल तक वो निकलते हुए प्राण, जो प्राण के पखेरु हैं उसको बनाए रखते हुए जीते रहे, इसी आशा से कि जब वो आएंगे तब हमको उनको आनंद देना है, चाहे हमें हजारों करोड़ों गुना दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, यातना मिलेगी, हम नष्ट हो जाएंगे, फिर भी हमको जीवित रहना है शरीर को अंदर प्राण को रखते हुए, ताकि उसे खुशी मिले जब वो आएगा। तो ये है प्रेम, ये नंदगांव का प्रेम है। यहाँ का जो भाव है वो समझना बड़ा मुश्किल है, कथा करना भी आसान है, मैं तो कह सकता हूँ, कथा भी कह सकते हैं, रट के कह सकते हैं, लेकिन वो भाव को समझना बहुत मुश्किल है। जो कह रहे हैं कि मरना आसान है, मैं मर सकता था आसानी से, मेरे लिए बहुत इजी था वो मरना, लेकिन जीवित रहना मुश्किल है, लेकिन वो जीवित रहना भी मुझे करना है, उस बात को करना पड़ेगा, जीवित रहना पड़ेगा उनके आनंद के लिए, उनकी सेवा के लिए। ये ऐसे इष्ट की भक्ति होती है, जो हमारे इष्ट होते हैं उनके लिए इस तरह की भक्ति जो है वो केवल यही मिलती है, और कहीं वैकुंठ में, द्वारका में, और कहीं वैकुंठ धाम जितने भी बनाए गए भगवान ने पृथ्वी पर और उनके दिव्य धाम में, वहां पर ऐसा भाव नहीं मिलता है। ये केवल ब्रज के अंदर के रहस्यमय जगहों में मिलता है, बरसानंद गांव के जैसे एरिया में, जहां पर गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने ये भाव प्रकट किया उनके प्रति। और ऐसा नहीं कि केवल नंद बाबा इस भाव में थे, सभी ग्वाल बाल, सभी सखा, सभी सखियां, यशोदा मैया, सभी गोपियां, सब लोग इसी भाव में थे। इस कथा से हमको अंदाज आ रहा है कि कैसे भाव में सारे ब्रजवासी, अनंत करोड़ों अबजों ब्रजवासी कैसे रहे होंगे 100 साल तक, क्या रहने का मतलब था। और रोज, अभी परसों, मतलब 2 दिन तो हो गए ना उनके लिए, 2 दिन तो हो गए, तीसरे दिन से तैयारी कर रहे हैं, सजा रहे हैं ब्रज को रोज की तरह, व्यंजन बनाए जा रहे हैं, खाना बनाया जा रहा है, खुद को सजा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, और दिन भर वेट कर रहे हैं, सब सजा सजा कर वेट कर रहे हैं, शाम तक लौट के नहीं आए तो पूरी माला बना के जो रखी है उसको तोड़ थाड़ कर, सब तोड़ करके बेहोश होकर छाती पीट कर रात भर रह रही है। फिर आशा जो है सुबह उठकर फिर वो आशा से आ जाएंगे, कल नहीं आए, आ जाएंगे, फिर तैयारी। रोज का बताना, रोज का तोड़ना, रोज रोना, फिर अगले दिन नहीं आशा के साथ में फिर तैयारी करना। ये आशा जो है ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है कि भगवान दर्शन देंगे, सेवा करने का मौका देंगे, कृपा करेंगे हम पर। इसी आशा पर भक्त जीता है, जन्म जन्मांतर तक, दर्शन भी नहीं होगा तो भी जीता है कि आएंगे, क्योंकि भगवान के, भगवान आशा का आगार है। हा? वो उनका अस्तित्व व्यक्तित्व ऐसा है कि वो हमको बहुत होप देते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ जो है ये आशा के ऊपर चलता है। जन्म जन्मांतर तक प्रयास करते रहेंगे लेकिन दर्शन होंगे, उनकी सेवा मिलेगी जरूर, नहीं दर्शन होंगे तो चलेगा। अश्लिष्यमा पादरताम पिनष्टु माम का मतलब क्या होता है? क्रशिंग, मतलब कुचल, कुचले जाना। मतलब आपको, हमको कुचलना है, कुचल दो, कोई बात नहीं। गले लगाना है, गले लगा लो, ठुकरा दो, पास बुलाओ, दूर भगाओ। हाँ, जो करना है कर सकते हैं आप, लेकिन हम आपके बने रहेंगे। आप चाहे ठुकरा देंगे लेकिन हम आपके बने रहेंगे, आपकी सेवा में रहेंगे। मत प्राण नाथस्तु स एव ना प्रहा, हम आप हमारे प्राणनाथ बने रहेंगे, आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे। ये गोपियों ने प्रस्तुत किया इस सत्य को, और चैतन्य महाप्रभु ने इसी सत्य को, इसी तत्व का प्रकाश किया कि गौड़ीय संप्रदाय में और जो बोनाफाइड सत्य, जो योग्य संप्रदाय है उनके अंदर चरम सीमा क्या है। सब कुछ निछावर कर दो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। बहुत क्रांतिकारी थॉट है ये बहुत रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट, यू नो। सब कुछ नछावर करने के बाद, न्यून और नष्ट होने के पश्चात आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने आप को अर्पण कर देते हैं, अपने आप को अर्पण करके देते हैं, और वो भगवान उनके बन जाते हैं। वो भगवान के तो होते ही हैं लेकिन भगवान भी उनके बन जाते हैं। ये शक्ति है उस भाव के अंदर। तो नंद बाबा का ये जो उदाहरण है इतना प्रेरणादायी है, कई बार बताने बाद भी उसका रहस्य समझ में नहीं आता पूरी तरह से, कितना विस्तार है उस भावना का, क्या भावना होगी उनके अंदर, कैसे वो कष्टमय स्थिति में जीवित रहने का प्रयास करते 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 आए होंगे, और कैसे उन्होंने यशोदा मैया का फेस किया होगा, कैसे सामने गए होंगे उसके, क्या बोला होगा उन्होंने, कितना प्रयास, कितना कष्ट, कितनी पीड़ा हो गई होगी उनके हृदय में, और साथ साथ में यशोदा मैया के मुख से वो कितनी अपशब्द सुन रहे हैं। एक स्वामी के पति, पति पति के प्रति कैसी भी पत्नी हो ऐसे बोल नहीं सकती, लेकिन वो प्रेम के वश इतना बुरा भला कह रही है, उसको भी सहन कर रही है और वेट कर रहे हैं, शांति से वेट कर रहे हैं कि मैं उसको जब अच्छी स्थिति में आएगी तो मैं समझाऊंगा उसको कि मैं ऐसे क्यों आया लौट के। कितना महान भक्त है नंद महाराज, इसलिए वो आचार्य हमारे संप्रदाय के कहते हैं कि हम नंद महाराज की पूजा करते हैं, क्योंकि वही पूजनीय है सच्चे। इस तरह से यहाँ कर भी वही भाव है आतुरता का, और हम शायद प्रार्थना करेंगे नंद बाबा से, कृष्ण भगवान से, यशोदा मैया से, कि उनके भावना का एक अब्जवा हिस्सा भी अगर हमारे अंदर कभी आता है कण के रूप में तो भी हमारा जीवन धन्य है। हम तो उसकी विचार भी कर सकते नहीं कि ऐसे कभी हो सकता है हमारे जीवन में, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपके चरणों में रहें, उनकी सेवा करने का मौका मिले, चाहे वो हमें धाम में ले जाए न ले जाए, यहीं रखें, कुत्ता बिल्ली बनाए, पंछी बनाए, इंसान बनाए, गरीब बनाए, अमीर बनाए, हाँ अनपढ़ बनाए, गंवार बनाए, जो भी रखना है, लेकिन जो से भी रखना है, जाके विधि राखो राम ताई विधि रही है। हम रहने को तैयार हैं लेकिन आपके बन के रहना है, आपके चरणों में रहना है, यही हमारी अपेक्षा है। हाँ, मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतात भक्तिर अहैतुकी त्वयि, मतलब क्या हुआ, जन्म जन्मांतर तक आपकी अहैतुकी भक्ति बनी रहे, मतलब क्या, मोक्ष नहीं हो रहा है ना। जन्म जन्मांतर कब होगा, तो बार बार आएंगे तब होगा ना, मतलब मोक्ष नहीं हो रहा है, मतलब बार बार आना पड़ रहा है, चलेगा हमको, मोक्ष भी नहीं चाहिए हमको, केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए, चाहे नरक में हो या स्वर्ग में हो, आपके चरणों में बने रहे, आपकी स्मृति में, आपकी सेवा में, यही एक तीव्र इच्छा लेकर हमको यहाँ पे आना है, उसी इच्छा को यहाँ पर अर्पण करके यहाँ से जाना है, तब हम कह सकते कि नंदगांव आए, कुछ हमें प्राप्ति हुई भगवान की भक्ति के मार्ग में। जय जय श्री राधे श्याम।